स्वभाव कहा जा रहा है और निषेध मुख से यह भी जीव नहीं, यह भी जीव नहीं, यह भी जीव नहीं, यह भी जीव का स्वभाव नहीं, कहते 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 ये अंत में ये कुछ और बातें हैं जो कि मुक्ति के लिए कारणभूत हैं, वे भी आत्मा के जीव के स्वभाव नहीं। धारणा हे यंत्र मंत्र मंडल मुद्रादिकम, व्यवहार ध्यान विषयम, मंत्रवाद शास्त्र कथितम, निर्दोष परमात्मा आराधना ध्याने निषेधयन्ति, परमात्मा की आराधना करने रूप ध्यान में किस किस का निषेध किया जा रहा है इसका कथन आगे कर रहे हैं। धारणा थे यंत्र है, मंत्र है, मंडल जिसको वायुमंडल है, अग्निमंडल है, पृथ्वी मंडल है आदि मंडल के माध्यम से करते हैं। मुद्राएं सिंह मुद्रा है, वीर मुद्रा है, नासावृत्ति है आदि आदि अनेक प्रकार की मुद्राएं होती है, क्षेत्रीय मुद्राएं हैं, अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं, इन सारी सारी मुद्राएं। व्यवहार ध्यान विषय क्योंकि व्यवहार ध्यान के ये विषय होते हैं। मंत्रवाद शास्त्र कथन जो कि मंत्रवाद शास्त्र है उसमें इसका सब कथन होता है। या तन्निर्दोष परमात्मा आराधना ध्यान है, दोष से रहित निरंजन ऐसे जो परमात्मा है उस ध्यान के काल में सबका निषेध हो जाता है। जानुन धारुन धेयुन भी जासुन जंतुन मन जासुन मंडल स्मुदन भी सोमुनि देवुअनम उसको अनंत अविनश्वर देव तुम समझो जानो, जिसमें यत जानो न धारणा, इनमें कोई धारणा नहीं है, न ध्येय है और न ही कोई यंत्र है, न मंत्र है और न ही कोई मंडल है, न कोई मुद्राएं हैं, वह एक अविनश्वर देव हैं जो कि इन सब से परे हैं। मणिमंत्र तंत्र वो कोई हाँ यंत्र जो बताते हैं, ऋषिमंडल यंत्र हैं, ऋषि चक्र मंडल यंत्र हैं, वही यंत्र हैं आदि आदि। मंत्र की अलग व्यवधा होती है, यंत्र की अलग व्यवधा होती है, तंत्र की अलग होती है। हाँ जासु होत की कक्षा मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। जिस समय मरण के काल में भी ये जब कार्यकारी नहीं होते उसी प्रकार ध्यान के काल में भी मंत्र तंत्र विद्याएं धारणा वगैरह ये सब व्यवहार ध्यान के कथन के समय पर बताए गए हैं। शुरुआत में प्राथमिक दशा में कुछ सहायक सामग्री बताई जाती है, किंतु जो ही वह वेगदार होता है तो फिर सारी बातें ये नहीं कही जाती है। पहले मान लीजिए पतंग को उड़ाना होता है तो क्या करते थे जब छोटे बच्चे उस समय, कि एक जो है उसको हाथ में पकड़ करके आगे भागता है और पीछे एक जो है उसका एक पीछे वाली पूंछ को अपने हाथ में लेकर के वह भी उसको भागता 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 क्यों कर देते दोनों मिलकर के, और थोड़े हवा वगैरह हो उसके माध्यम से वह ऊपर उठ जाता है। छोले छुट्टा छुट्टा जिसको बोलते हैं बालवासा बालवासा वो उड़ाते तो नहीं, लेकिन वो पतंग अलग है, घर वाला अलग, घर वाला तो अर्थ ये है, इसी प्रकार कोई साइकिल सीखता है मान लो, तो वह उसको बिठा दिया जाता है, वो कोई भी दूसरा जो उसको हैंडल भी एक हाथ से पकड़ लेता है, वो वैसे बैठना ही मुश्किल। अब फिर भी वह पैडल चलाओ तो वैसे से वह नीचे देख करके पैडल को चलाना प्रारंभ कर देता है, ऐसा करता है निश्चित बात है। और पीछे भी कुछ पकड़ लेते हैं धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर कॉर्नर वगैरह नहीं होते, मैदान रहता है, जिधर भी घुमाओ ठीक है, गिरेगा तो नहीं है, इस प्रकार जगह में उसको करते करते फिर एक बार जब आने लग जाता है तो धीरे धीरे एक हाथ छोड़ दिया जाता, दूसरा हाथ छोड़ दिया जाता, पीछे का भी बैलेंस छोड़ दिया जाता है, फिर ये कब छोड़ा गया ये भी उसे पता नहीं रहता है। जब पीछे पकड़ने वाला व्यक्ति, सहारा देने वाला व्यक्ति जब सामने आ जाता है तो कहता तुमने कब छोड़ा, तुम तो चलाओ, ऐसा ही होता है। तो अर्थ ये है कि यह सब आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं, कुछ देर के लिए व्यवहार है, ये यूं कह दो व्यवहार की सीमा क्या है तो यही सीमा है। इसके उपरांत भी मानव वह नहीं सीखता है तो फिर वह व्यवहार व्यवहार नहीं माना जाता है। इसके उपरांत भी वह यदि नहीं सीख पाता है तो व्यवहार के द्वारा सीखा नहीं जाता कि भीतर निश्चय यदि है तो व्यवहार उसके लिए हेल्पिंग हो जाता है, लेकिन वह भीतर का नहीं है तो बाहर का कोई कार्यकारी नहीं करेगा। कैसा है तो ये नहीं है, बस जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, जो सीख रहा हुआ आत्मा नहीं, देख रहा है तो आत्मा। अब देखना बंद करके देखो तो वह यही सीखेगा पुनः है, चक्षु इंद्र के बिना भी और स्पर्श इंद्र के बिना भी, और ये इन इंद्रियों के माध्यम से तो कुछ महसूस हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, संवेदन में आ रहा है, स्मृति जो वो आ रही है वह ज्ञान का विषय है। ज्ञान तो आत्मा, मतलब पूरा का पूरा बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, सब अपने में अंदर ही है। वह यदि फ्यूज हो जाए तो फिर तो कोई बाहर थोड़ी प्रकाश है, प्रकाश तो वही है, केंद्र वही है, उस ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है। जो कुछ भी अपने को देखना बाहर ही देखना है, ये जीवन बन गया है। ज्ञानी कहलाने वाले की भी बात यही हो रही है, जो निरक्षर हैं वो भी हो रही हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, सब एक ही भाव में बह रहे हैं। यानी कहीं भी कोने में बैठ करके बाहर इसलिए नहीं देखता, बाहर देखने कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो सब भीतर का ही है खेल, तो ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, इसलिए सब जगह देखो छान, जब छान लिया तो अब कम से कम मत छानो, वही वही पुनरावृत्ति आवृत्ति होती चली जाती है। तो ज्ञानी कहते हैं भैया इस संसार में इन व्यक्तियों को हम कहां तक समझाएं, समझदार व्यक्ति समझाने के चक्कर में नहीं लगता, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत दुर्लभता से समझ में बात आई है, और जिसको आएगी तो हम यदि समझ करके मौन हो जाएंगे तो बार बार पूछा जाएगा आप तो बोलते नहीं, आप तो देखते ही नहीं, आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं, ऐसी क्या बात हो गई। अब देखो और उसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, रोष भी नहीं किया जाता है, तो उसको ऐसा लगता है क्या बात हो गई आज, हमारी कोई गलती तो नहीं, फिर इसके उपरांत भी नहीं, और बार बार पूछने के उपरांत ये संकेत दिया भैया हमारा काम निकले तो बैठे, अब कौन सा काम है, यही तो काम था जो आज तक का काम था ही नहीं वो करते आए, अब तो काम यही है। भगवान न हिलते हैं न डुलते हैं न डोलते, न कोई आपको पूछते कितनी कठोरता है, कठोरता नहीं स्वभाव है। कितने दिन तक के लिए, अब दिन मत पूछो, अब भाव मत पूछो, कब तक? नो एंड, कोई अंत नहीं, अब अनंत काल के लिए ऐसे बैठे रहेंगे। दुनिया की कोई भी शक्ति उनको पलटा नहीं सकती, आकृष्ट नहीं कर सकती। और ऐसी मूर्ति को देख करके ही ज्ञानी खोज खो जाते हैं कि धन्य हैं, इन्होंने कैसे अपने आप को इस चक्कर से बचा दिया, कमाल किया। इस भीतरी रहस्य को समझना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, जो हमारे लिए बहुत ही टेढ़ा बना हुआ है। ऐसे अनंत स्थित परमेश्वर बन चुके, इस कार्य को पूर्ण कर लिया, इस परीक्षा में पूर्ण पास हो गए, 100/100 नंबर ले लिया उन्होंने। मोह का यह केंद्र या कार्य, इसको उन्होंने फेल कर दिया। अब कोई प्रलोभन नहीं रहा, कैसा है तो ऐसा। यस्य परमात्मनः नास्ति न विद्यते, जिस परमात्मा के पास कुछ भी नहीं है। किम न किम किम कुंभक कुंभक रेचक पूरक संज्ञा वायु धारणादिक प्रतिमादिकम ध्येयमिति। ये धारणा और ध्येय है, कुंभक है, रेचक है, पूरक है। कुंभक मैंने पहले पूरक होता है, फिर बाद में कुंभक होता है, फिर बाद में रेचक होता है। कुंभक मैंने जो ग्रहण किया है उसको कुंभाकार कर देना, ये वायु धारणा इत्यादि में आ जाती है। पूरक मतलब ले लेना, कुंभक मैंने रोक लेना, और रेचक मैंने उसको छोड़ देना। इस प्रकार की ये प्राणायाम की प्रक्रिया है। वो भी जानना मुझे चवर सकती है, कुंभक रेचक इत्यादि को उसके उपरांत आगे और बढ़ा दो, धारणा बना दे। और प्रतिमा आदि का देखो, ये ध्यान रखना, ध्येय वगैरह जो बनाया जाता है उसका प्रतिमा इत्यादि के लिए प्रतिमा धारणा बना ली जाती है। मंत्र की भी धारणा बनती है तो प्रतिमा की भी धारणा बनती है। मंत्र की धारणा में थोड़े मस्तिष्क में विशेष रूप से जोर पड़ता है, जबकि प्रतिमा आदि की जो धारणा होती है उसमें थोड़े से सुविधा रहती है। हाँ, प्रणवोकार मंत्र हम पढ़ रहे हैं या उसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, और सामने मानो प्रतिमा है, प्रतिमा की धारणा बने, देखने रूपी धारणा होती है, और प्रतिमा को बिल्कुल जो का तो सामने ला करके खड़े कर दे वो भी होती है। मंत्र के माध्यम से थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि मंत्र शब्दात्मक होता है, और जब वो ये है प्रतिमा वगैरह ये शब्दात्मक न होकर के ये एक सिंबल जैसे हो जाते हैं, इसमें सुविधा रहती है। परिकमनम परिहरणम परिसरणम धारणा नियति है, धारणा का जहां पर आया है वहां पर जयसिंह स्वामी ने तात्पर्यवृत्ति में समय सार की गाथाओं के वहां पर लिखा कि मंत्र नमोकार मंत्र इत्यादि और प्रतिमा जिन बिंबादिक ये धारणा के विषय बन जाते हैं। प्राथमिक दशा में ये आवश्यक होते हैं। सुनते हैं नेमिजन सिद्धांत चक्रवर्ती के लिए धारणा के लिए सहायक भूत नेमिनाथ भगवान का एक बिंब था, जो कि एक फीट सवा फीट एक हाथ के बराबर नीलम की प्रतिमा थी। ऐसे गोमट सार आदि ग्रंथों की टीका इत्यादि में उल्लेखित होता है। अभी वह वर्तमान में कहां पर है क्या नहीं, इसका कोई ज्ञान नहीं, किंतु विद्वानों ने इस बात को खोजी है कि उनका एक चैत्यालय था, वहीं पर गोमट सार आदि का संपादन उन्होंने किया है, ऐसा उल्लेख मिलता है। हाँ उस समय क्योंकि भट्टारक वगैरह हो नहीं भी हो तो जो गृहस्थ रखते थे उस समय जो राजा महाराजा होते थे उनका एक कार्य था, जब विदेश यात्रा वो लोग करते और रत्न मोती माणिक इत्यादि का व्यापार करते हैं, उनमें विशेष विशेष जो पीस नग मिलते हैं जिनकी प्रतिमाओं का बनाना उनके लिए बहुत विशेष रूप से शौक था, वज्र की है, स्फटिक मणि की है, नीलम की है, पुखराज की है, माणिक की है, मूंगे की है, आदि आदि प्रतिमाएं पहले बनाई जाती थी। अभी कारंजा वगैरह में इन्हें बताते हैं और मोड़ भित्री वगैरह आप लोग गए होंगे, सिद्धांत मंदिर वगैरह हैं मोड़ भित्री में, वहां पर स्फटिक मणि की है और मोती मूंगा इत्यादि गरुड़ मणि आदि आदि के स्पेशल मिलते हैं। एक बार हम गए थे उस समय दिखाया था और बिल्कुल अंधकार बनाया जाता है, फिर बाद में प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। तो निकाल कि दुनिया में सबसे बड़े बाहुबली भगवान का दर्शन भी यहीं पर है, तो सबसे छोटे बाहुबली भगवान का भी दर्शन यहीं पर है, और ए बिल्कुल मूंगफली से थोड़े से बड़े थे और वह कि दिखाया था तो हाँ पूछ कर, लेकिन वह मोती क्या किस्म है ये पता नहीं लगा, एक अलग ही प्रकार के था और उसमें बाहुबली भगवान था। एक गरुड़ मणि की जो प्रतिमा थी तो उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर कलशाभिषेक कर लो और उस पानी को पी लो तो जहर उतर जाता था, सर्प काटा हुआ था उसका गरुड़ मणि। और एक ऐसा बिंब था जिस बिंब के ऊपर ऊपर जो है दूध का स्प्रे कर लो नीचे दही ले लो, दही जमाने की कोई आवश्यकता नहीं, दूध का स्प्रे निकलो और नीचे दही ले लो। उस पाषाण में या उस मणि में क्या विशेषता है उस दूध को, वह छात्र करते नींबू जैसे हाथों हाथ बन जाते, बहुत सारे माणिक की प्रतिमाएं, मूंगे की प्रतिमाएं, ऐसी प्रतिमा। और ये है राजा महाराजों के जमाने में, और जो जो कोई भी सेठ साहूकार चला जाता है तो ये हम पहले राजा कह देता है देखो तुम जा रहे हो ऐसे कोई विशेष चीज मिलेगी तो पहले अपने के लिए, तो वो जाकर के भेंट में दे देता और उसकी प्रतिमा बन जाती। फिर जवाब में अपने चातुर्मास हुआ था, चंद्रप्रभ मंदिर है वहां पर और वहां पर सवा फीट की स्फटिक में प्रतिमा है। किमिदंती के अनुसार ये कहा जाता है चंद्रप्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद्रम द्वितीय जगती विकांतम वंदे विवंदम महता मृषीन्द्रम जिनम जित स्वाद कषाय बंद। ये समंतवद महाराज ने स्वयं स्त्रोत्र में चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति की, वह इसी प्रतिमा को लेकर के, इसलिए ये प्रतिमा उद्घाटित हो गई थी ऐसे किंवदंती कथा मिलती है। और वह सवा फीट के भारत वर्ष में इससे बढ़कर के कहीं भी प्रतिमा नहीं है, बहुत सुंदर स्फटिक मणि की प्रतिमा है। इस प्रकार इन प्रतिमाओं के माध्यम से कि पहले के सेठ साहूकार और जो कोई भी उपासक हैं वे ध्यान धारणा लगाते थे और इस प्रकार के कार्य करते थे। हाँ? क्या कह रहे हैं ठीक है ना, ये ध्यान थे जो धारणा वगैरह बना रहे हैं ना, इस रूप से परमात्मा है ही नहीं, ये कोई साधन है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो लोग जो है ना, वो लोग जो है जैसे काम धारणा बनाते हैं, गरुड़ धारणा बना देते हैं या और कोई भी पवन धारणा बना लेते हैं, तो पवन को ही वह वरुण को ही वह भगवान मानने लग जाते हैं, गरुड़ को ही मानने लग जाते हैं, तो नहीं, एक वह प्रतीक के रूप में ले लेना चाहिए। जिस प्रकार गरुड़ के नाम सुनते ही सर्प का सर्प भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान के नाम लेते ही अजर अमर अविनाश्वर पद के चिंतन करते ही कर्म का नाश होता है। ये सभी जैसे एक प्रतीक रखा, वो प्रतीक को ही भगवान मान लिया, मंडल को ही भगवान मान लिया, ऐसा नहीं अग्नि को ही भगवान मान लिया। अग्नि के द्वारा जिस प्रकार ईंधन भस्म सात हो जाता है, ये अग्नि को प्रतीक रखा, उसी प्रकार अपने कर्म का क्षय करना है तो उसके लिए अग्नि को प्रतीक मान करके चलिए। ध्यान करने योग्य ऐसा नहीं है। ये सब जितने भी हैं ये ध्यान के काल में नहीं होना चाहिए, ये इसका उत्थाने को पढ़ो। अच्छा व्यवहार ज्ञान के विषय होते हुए भी जो हम निर्विकल्प निर्दोष परमात्मा का ध्यान किया जाता है उस समय ये सब नहीं रहते नहीं, इसलिए प्राथमिक दशा में तो ये संभव है और अगली दशा में नहीं रहते। पुनरपि किंतुतम अक्षर रचनादि विन्यास रूप स्तंभन मोह स्तंभन मोहनादि विषय यंत्र स्वरूपम। देखो अरे यंत्र किसको बोलते हैं, बोलते हैं अक्षर रचना बना ली, ओम बना लिया, अ बना लिया, ई बना ली, रीम बना ली, ये सारे सारे अक्षर रचना ये यंत्र माने जाते हैं। शुद्ध चतुर्मंडल यंत्र है, प्रतीक है, वो है, ये सब इसमें आ जाते हैं। अक्षर रचना विन्यास रूप स्तंभन मोहन आदि विषय यंत्र स्वरूपम विविध अक्षर उच्चारण रूपम मंत्र स्वरूपम। अक्षरों का प्रतीक रहा सामने रखना ये यंत्र हो गया और उन अक्षरों का उच्चारण करना ये मंत्र हो गया। अप मंडल वायु मंडल पृथ्वी मंडलादिकम गारुड़ मुद्रा ज्ञान मुद्रादिकम च यच्च नास्ति तं परमात्मानं देवं आराध्यं जानेहि। उसी प्रकार अप मंडल है, वायुमंडल है, अब मैंने जल मंडल पृथ्वी मंडल है, यह गारुड़ मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, आदि आदि मुद्राएं, ये परमात्मा के स्वरूप नहीं है, ये आराध्य नहीं है, जो आराध्य होंगे वो अलग है। द्रव्यार्थ गणेन अनंतम अविनश्वरम अनंत ज्ञानादि गुण स्वभाव च मन्यस्व ज्ञानी। द्रव्यार्थ गणे की अपेक्षा से अविनश्वर रूप अनंत सीमातीत अनंत ज्ञान स्वभाव वाला परमात्मा है ऐसा तुम जानो। अतीन्द्रिय सुख आस्वाद विपरीत इंद्रियातीत जो सुख है उस आस्वाद से विपरीत भूत दिव्येन्द्रिय विषय दिव्येन्द्रिय का विषय निर्मोह शुद्धात्म स्वभाव प्रतिकूल जो कि मोह से रहित शुद्धात्मा के स्वभाव से प्रतिकूल ऐसा जो मोह है वीतराग सहजानंद परम समृद्धि भाव सुख रस अनुभव प्रतिपक्ष राग से रहित सहज आनंद स्वरूप समृद्धि भाव रूप जो सुख है रसास्वादन है अनुभव है उसके प्रतिपक्ष भूत नव प्रकार ब्रह्मव्रतस्य अब्रह्मव्रतस्य नव प्रकार के अब्रह्मव्रत रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि घातकस्य जो कि निर्विकल्प समाधि के घातक के रूप में है मनोगत संकल्प विकल्प जालस्य
मनोगत संकल्प विकल्प जालस्य
मन में उठते हुए संकल्प और विकल्प के जाल रूप से विजयम कृत्वा इन सब को हटा करके दूर करके हे प्रभाकर भट्ट हे प्रभाकर भट्ट शुद्धात्मानं अनुभव इत्यर्थः शुद्धात्मा का तुम अनुभव करो तथा जो उक्तम अखान रसनी कम्मान मोहिनी सहवयान बम्बम च बुद्धि सुयमन बुद्धि यौरो दुःखे शिष्यन्ते इंद्रियों में कौन से इंद्रिय महान बलवती है रसनी रसना इंद्री अखान रसनी क्या बातें करना नहीं है बहुत अच्छी अच्छी खाने के लिए चाहिए तो इंद्रिय विजय में बाकी सब ठीक है हम कान सुनना नहीं चाहते हैं नाचिका की भी कोई आवश्यकता नहीं स्पर्श इंद्रिय भी है ये सारी कोई इंद्रिया इंद्रिया नहीं है एक प रकार से इस ये की बात कह रहे हैं अखानम रसनी इंद्रियों में एक रसनेन्द्रिय है और कर्मों में सारे सारे कमजोर कर्म है कर्मों में मोह सबसे बड़ा बलवान है तह वयान बम्बम के व्रतों में कौन सा है सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत है बुद्धि सु बुद्धियों में क्या मौन धारण करके बैठो मन को पहले समझाओ भैया मन बुद्धि मन जिसका स्थिर हो गया सब बुद्धियां पल गई चौरों दुखे मन वचन का ऋण संबंधी देव संबंधी है थोड़े जोर से तो बोले तो बता देना मन वचन का है प्रेम तीन संबंधी जो वित्त संबंधी स्त्रियों कल न हो कोई तो मन वचन का है अथवा तो कृतकार्य से लगा लो कोई बात नौ प्रकार के नवन बमचेर गुच्छे भुक्ति के लिए तो आचार्य कह रहे हैं कोई भी आए पर ये कहा जा रहा है भुक्ति सबसे ज्यादा प्रौढ़ होती है बस हैं नहीं मन पहले रुकता है कैसे क्या चल पहले देखो वहां पर नहीं योग निग्रह करते हैं बारह बादर मन मन रुम्बनम बादर वचवंजनम बादर काय रुम्बनम फिर बादर शक्ति शास्त्र बनम फिर इसके उपरांत सूक्ष्म मनोयोगम है सूक्ष्म वचन योगम सूक्ष्म सच्चो शास्त्र फिर सूक्ष्म काय में स्थिर होकर के आज को बात है की देवी यही है तो ये कह रहे हैं वो नहीं मतलब प्रौढ़ की बात कह रहे हैं या क्रम की बात नहीं कह रहे ये यही कहा जा रहा है यही कहा जा रहा है यही कहा जा रहा है तो मुख्य तो ये व्रतों में कौन सा पहले हिंसा व्रत होता फिर बारवाद में सत्य होता ऐसा आचार्य ये कह रहे हैं कठिनाई कहां पर है इसको लगती पांच इंद्रियों में दसवें इंद्रिय का जो तो पांच इंद्रियों में दो इंद्रिय भोगी इंद्रिय हैं और एक इंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं कहा है ना मूलाचार वगैरह में चटक मटक है श्रद्धा के माध्यम से आएगी तत्व विज्ञान के माध्यम से आएगी अभी हमारे सामने क्या है उसके ऊपर आधारित है अनुसार संसार से कोई मतलब नहीं पहले मन चलपन होता है फिर हम उल्टी हैं क्यों कह दो आंख पहले खुलती है कि खोलने की बात पहले आती है विकल्प आएगा ना प्रथमो जायते चिंता द्वितीय दृष्टमुच्यते तृतीय दीर्घ निश्वासो चतुर्थे भजते ज्वरम पंचमी शांत पंचमी दयते गात्रम षष्ठे भुक्तम न रोचते सप्तमी शांत महामूर्छाष्टमी उन्मत्तम अथाष्टमी नयने शांत महान मूर्छा दशमी चते नवमी प्राण संदेहो दसवें मुच्यते सुवे दस प्रकार के ये वेग आते हैं काम के वेग माने जाते हैं देखें देखें से बाद में रखो अभी तो हम कह रहे हैं कि पहले मन में विकल्प आया कि नहीं मन में विकल्प आने के उपरांत इंद्रियों का व्यापार होता है सीधी सीधी बात जिसको ये जाता था उसके लिए कहा था लेकिन होता ऐसे है कि मन जिसका चंचल नहीं है उसका सारा का सारा काम ठीक हो जाएगा नहीं हो पा रहा उसके लिए हमने क्षेत्र क्षेत्र चेंज कर दो और बह जाओ हम शाम तक यहाँ से उठेंगे नहीं मन जल जा नहीं कोई बात नहीं उसके माध्यम से उसको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है देखो संकल्प तो ले लिया हमने पर फिर भी बाजार में बार बार जा रहा है ये मेरे लिए अच्छा नहीं फिर उसको हम समझा देंगे धीरे धीरे ऐसा होता है ये तो है करंट दे देते ना करंट लगाते हैं ग्वालियर भेज करके हाँ पागल को ठीक करने का तो यही तरीका है पर जबरदस्ती करंट दिया जा रहा है ये तो होगा तो इससे भी हो सकता है लेकिन कार्य तो यही है महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए जिसने निश्चय कर लिया मन की धारणा बना ली फिर उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं बार बार अवग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं अब 50 बार अवग्रह हो गए, इया हो गई, इच्छा हो गई, लुढ़क गई, फुड़क गई, बदल गई, क्या है ये है? और जिसका एक बार हो गया तो फिर देखे नहीं, वो प्रौढ़ माना जाता। जिसकी मन की चंचलता है, उस मन चंचल पने वाले के पास ने बड़े बड़े महाव्रत दे देंगे तो कैसे निभाएगा वो? इसलिए वान मनोमुक्तिर्यादान क्षेपण समित्य आलोकित पान भोजनान पंच, क्या है ये सप्तम अध्याय का सूत्र है महाराज? किस काम का है? भाजपा में बात करने का। क्या कहा इसमें? मन गुप्ति और वचन गुप्ति जो रखेगा उसके अहिंसा महाव्रत की रक्षा नीत हो जाती है। बोलने से हिंसा हो सकती है, होती है, यह जिसकी धारणा बनेगी वह बोलने को ही बोलने से डरेगा। अहिंसा महाव्रत के लिए मन की चंचलता जितनी होगी उतनी ही जो है उसकी व्रतों की ढीलापन जिसको बोलते हो जाए, मन बार बार स्खलित होने लग जाएगा, डावाडोल होने लग जाएगा, तो फिर उसके पास व्रत जो है ना बहुत असंभव है, आप रह नहीं सकते। बंदर जैसा खेल है। हाँ, मन की बिल्कुल दृढ़ता होने से नहीं, दमदार बेड़ा पार वाली बात है, कुछ भी हो उनके लिए तब नहीं सकते। ऐसा है ना कि इसके माध्यम से उसको स्कोप मिल जाता है, हम बोलते भी रहे और इधर उधर भागते भी रहे तो मन मन के माध्यम से तो कर रहे हैं सारे सारे, मौन रखो, काय से समिति पूर्वक चर्चा वगैरह करो, फिर मन के लिए जो आवश्यक पदार्थ हो उसी पदार्थ के बारे में चिंतन करो। चिंतन करने के लिए पहले नहीं कहा जा रहा आपको, उधर न जाए इस अपीछे से चिंतन करो ऐसा कहा जा रहा है, ये ध्यान रखना। हम कोई चिंतन करने के लिए व्रत नहीं देते, देना पड़ता इसलिए कि उधर न जाए। हाँ, नाश्ता इसलिए दी जाती है कि कहीं भोजन की चिंता करने लग जाए, भोजन तो 12 बजे मिलेगा, सीधी सीधी बात है। अब कहीं इधर उधर खाने ले इसलिए थोड़ी बहुत नाश्ता देकर के उसको विश्वास कर दिया जाता है कि बैठ जाओ, नहीं हमने आज तक कोई आकर नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी ढंग से खिल करके भूख लग जाए तो खा लो 12 बजे तो खा। चिंतन का अर्थ क्या, उपयोग लगाने का अर्थ क्या है? कोई कार्य नहीं है जिसका मन अन्यत्र जा सकता है, जाने की संभावना रहती है, फिर उसके लिए हम क्या करें? तो हम क्या करें, हम तो कहते हैं परमात्मा का इसको रखो अपने पास, इसको समझ लिया, देखो महाराज जी ने हमारे लिए परमात्मा का दिया तुम्हारे लिए नहीं दिया, प्रिज्म जी हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है इसलिए हमारे लिए तो परमात्मा का दे दिया, अब जिसको नहीं दी नहीं मिली तो कहते तुम्हारे लिए इसलिए नहीं दिया तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं, ऐसा नहीं है, वो इसलिए नहीं लिया गया कि उसको कोई आवश्यकता नहीं। आजकल ऐसे सोचते हैं कि ये चश्मा लगाया बहुत साहूकार होगा, नहीं समझे, हम ये नहीं समझ रहा था कि इसकी आगे खराब है, ये बहुत साहूकार है, रोल गोल के जो फ्रेम हो रहे हैं और चश्मा पहन करके आ रही है, कोई दागिना है कि क्या ऑर्नामेंट से है? पर्सन ने बहुत माइंडेड है, जब पर्सन लेते आय कमजोर है ऐसा नहीं कोई समझता है, माइंडेड अच्छा मतलब ये सारे सारे जो है ना इसी प्रकार के व्यक्तियों ने धारणा बना रखी। हेल्पी वर्ब का अर्थ क्या है? ये है कि वह अपने आप चलने में सक्षम नहीं है, भावनाएं तो करो, इधर उधर की भावना हो रही है ना, इसलिए उसकी भावना करो करो, इसलिए कहा जा रहा है ये मतलब मूल प्रासंगिक विषय, करो इसलिए कहा जा रहा है कि अन्यत्र जा रहा है यदि इसको इधर रखो ऐसा कहा गया, अन्यत्र जा रहा है, इसलिए इसको रखा कि नहीं यहां रखो, यहां रखो, ये शर्त बाद में है। त्याग हो गया आप क्या रखो, पुनः उस ओर जाता है तो ये इसके माध्यम से करो। तनवा छोड़ो, ये इसलिए कहा गया कि मन को लाने का एक तरीका ये भी है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। मृत्यु हो जाएगी। अब मान ली पास साइंस का छात्र है, ठीक पढ़ रहा, और उसका दोस्त है कॉमर्स वाला, कभी भूल करके कॉमर्स की किताब ये पढ़ता है क्या? और कॉमर्स वाला साइंस की किताब पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? ये विषय भिन्न है, उसको पढ़ेगा तो वह फेल हो जाएगा। तो आपसे चलना है उसी रास्ते को अपनाना, एक बार सीधा रास्ता बता दिया, अब बोर्ड की क्या आवश्यकता, इधर उधर घूमने वाले आप कहीं भटक जाए, इसलिए कह दिया कि भैया ये सीधे चले। मैंने अपने कहा अगर सीधे जाओ तो सीधे चले जाओ, अब इधर उधर मान लो करने लग जाए, अब इधर मुड़ कर देख लिया फिर भूल गए किधर जाना था, तो सीधे चले गए, तो कहाँ गए? घर जब आ गया, अरे ये घर आ गया। तो हमने कहा जरा सीधे जाओ, सीधे तो जा रहे थे, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आ गया तो मुड़ गए तो मुड़ गए। संसार क्या है, मुक्ति मार्ग क्या है, ये जब जिसको ज्ञात हो गया वो मुड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। ज्ञान का मूल्यांकन पढ़ने और सुनने या स्मरण करने से नहीं है, ज्ञान का मूल्यांकन किस ओर हमारा रास्ता है उसको पहचानने के लिए है। लेकिन आज उस पहचान से दूर होकर के लिखना पढ़ना सोचना बोलना नहीं समझे, इन्हीं को ज्ञान कौन, ये कोई मान नहीं, ये काम चलाओ उपयोग को लगाने की अपेक्षा से। और जिसका उपयोग लग गया, ये कहा है कि आरंभ कई प्रकार के होते हैं, तो लिखने पढ़ने रूप भी आरंभ होते हैं। पढ़ने रूप तो कम समझो, लेकिन लिखने को भी आरंभ कहा है। अभी अभी मत लिखो ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये तो कम से कम ध्यान रहे उस लिखने के माध्यम से, लोग लिखना भी एक प्रकार का आरंभ है, ये भी कम से कम आपको लिखना है। नहीं नहीं निश्चित बात है, नहीं इसमें आया है ना सर्वासिद्धि में, और अपने दशा सूत्र में निर्वर्तन कितने प्रकार के, मूल गुण निर्वर्तन उत्तर गुण निर्वर्तन, ये तो ये सूत्र तो तब आते हैं जैसे बिल्कुल वाद्यपद में बिल्कुल राजा होते हैं। मूल गुण निर्वर्तन उत्तर गुण निर्वर्तन है, पुस्तक है और कोई पीछे है कमंडलू है वो है ये है, इन सारे सारे इनके बारे में जो कार्य होता है सब मूल गुण उत्तर गुण निर्वर्तन में आ जाते हैं। ये कोई गुण नहीं है, ये मूल गुण, और तो ये समझ लो ये हमारे मूल गुण है और उत्तर गुण है, ऐसा नहीं है। हाँ, मन वचन काय की विशेष रूप से प्रवृत्ति करना भी मूल गुण निर्वर्तन है, और ये पुस्तक है पाठ है वो ये है जो कोई चीजें हैं निमित्त निर्वर्तन आरंभ इत्यादि किए जाते हैं उत्तर गुण निर्वर्तन माने जाते हैं, इसके द्वारा दोष लगते हैं, प्रायश्चित लेना पड़ता है। यही जिसको ज्ञात नहीं है तो वह प्रायश्चित लेना तो दूर रह गया कि वह अपने आप को गुणी मानने लगा, तो गड़बड़ है। ऐसी ऐसी भी चर्या होती है उत्कृष्ट दशा में कि वह बाल में से खाल निकालना प्रारंभ कर देता है, हमें इससे भी दूर होना, इससे भी दूर होना, इससे भी दूर होना। खाने पीने की चीज के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बाधक है, अक्षम्य हो गए इसलिए जो है जीवन पर्यंत वही करते जाओ वो अच्छा नहीं। अच्छा अखानम रसनी कम्मानम मोहिनी तह वयान बम्बम च व्रतों में ब्रह्मचर्य बुद्धिशु मनबुद्धि चौरों दुखे इच्छन्ति। और इन चारों से दूर होंगे तो दुखों से दूर हो जाएंगे। दुखे अच्छा दुहे दूहे कठिनतर मुश्किल स्थिति होती। अच्छा सिज्जंती हाँ न हमने को कहा कि चतुर ही दुखे ही सिज्जंती है, ऐसा हमने लगा दिया चोर में नहीं चतुर, ठीक है। ये बहुत दुर्लभ से ही सिद्ध होते हैं, रत्नेन्द्र के ऊपर विजय, मोहनी कर्म को समाप्त करना, ब्रह्मचर्य को निर्दोष रखना, मन गुप्ति को काबू में रखना, ये चारों जो है ना बहुत दुर्लभ से पाप होते हैं। इन चारों में से एक प्राप्त होना भी बहुत दुर्लभ है, और एक होता तो चारों हो जाएंगे। वेद शास्त्र इंद्रियादि परद्रव्य आलंबन विषय चाहिए, शास्त्र रखना, वेद रखना, इंद्रिय आदि के परद्रव्य का आलंबन लेना, विषयों का, ये सारे सारे निर्विकल्प समाधि के कारोबार निषिद्ध हैं। हाँ आलंबना विषयम, आलंबना विषयम अविषयम, इनका विषय नहीं बनाना, इनका आलंबन लेना, निर्विकार निर्विकल्प समाधि विषय से परमात्मा नाम प्रतिपादित अविषय, इसका कोई विषय नहीं बनाना, वीर को भी ध्यान रखना है ध्यान में नहीं लाना, शास्त्र को भी नहीं, इंद्रिय के विषयों के भी नहीं, परद्रव्य का आलंबन भी नहीं, मन का आलंबन भी नहीं लिया जाता है। और पांच इंद्रियों का जब व्यापार नहीं होता है तो क्या रह गया, ज्ञान तो बिल्कुल ही विषयातीत हो जाता है। ऐसा प्रयास, ऐसी साधना अपने को करना चाहिए। सामायिक में क्या किया जाता है तो पांचों इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके पांचों इंद्रियों को बिल्कुल शांत बना देना, फिर मन एक और रह जाता है तो मन के लिए भी कर देना, थोड़ी सो विश्राम कर ले, कहीं भी बन ले, विद्रा निर्विकल दशा में यह बनेगा। एक बार आप वो नहीं भी प्राप्त करते हैं तो भी ये बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, पांच इंद्रियों को तो रोकना तो आपको याद है, मन को कैसा रोका जाए, मन को एक ढूंढ ढूंढ करके विषय देने की अपेक्षा अपने आप कोई भी विषय आ गया मान लो, रहने दीजिए कोई बात नहीं, आप चिंतन न करिए, और ये मत करिए कि हमारा ज्ञान बिगड़ जाएगा, चिंता न रहे, बिगड़ता कुछ नहीं है, चला चला करके किसी विषय पर लगाने से परिश्रम होता है शांति से। जैसे छात्र चाहते हैं कि आप प्रश्न न निकाले हम निकालते हैं, ठीक है, आप निकालने का मतलब यही है कि वह प्रश्न बिल्कुल सरल, लिखने भी कोई आवश्यकता नहीं, आमुख ही बोलते चले जाए। तो इसी प्रकार मन के सामने कोई विषय न रखिए, जो कुछ भी आ रहा आने दीजिए, सहज रूप से चला करके जो हम देखते हैं, एक तो देखने में आता है और एक अनिमेष रूप से देखा जाना, एक तो सुनने में आ रहा है और एक कान लगा करके सुनना, इसमें अंतर है। तो ये ध्यान लगाना नहीं, टेंशन नहीं बनाना, इस प्रकार सहजता आप अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अस्पताल में ये किया जाता है, कराया जाता है, पहले क्या कर देते हैं भैया उनके लिए इधर उधर के चित्र वगैरह तो मत दिखाओ, अस्पताल में जाने के उपरांत ऐसा रूम दिया जाता है उसको पांच इंद्रियों से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, और उनके लिए कोई भी भेंट के लिए नहीं जाएगा, तुम्हें क्या होगा कैसा हुआ कब वो निकलेंगे अस्पताल से आदि आदि बातें मत पूछिए, ये हो गया। इसके उपरांत मान लीजिए अब उसको नींद नहीं आ रही है तो ठीक है गोली दे दो और निद्रा, वह ज्ञान उसका काम न करे, इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से उसका जो ज्ञान परिश्रम कर रहा था उसको रोकने का मतलब बेड रेस्ट का मतलब ही यही है कि भैया बिस्तर छोड़ करके ना आए, बस। अब बेड रेस्ट को ये बेड रेस्ट हो जाता है सब बिल्कुल चारों ओर उसके आगे पीछे क्या हो गया, हमने जब से सुना हमें चिंता हो गई, ठीक है आ गए, और भिड़ गए। 10 मिनट 15 मिनट वो एक आएगा, उसके उपरांत दूसरा आएगा, उसके उपरांत तीसरा आएगा। हमने सोचा तक नहीं था कि इस प्रकार तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। और नहीं, वैयावृत करने वालों के द्वारा विशेष रूप से यह होती है प्राय करके। आप सोच लीजिए, बुरा ना मान लीजिए, वस्तुतः विवेक से जो वैयावृत करने वाला होता है उसके द्वारा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन वैयावृत जो जानते नहीं रक्षण, उनके द्वारा प्राय अगर भैया उठ करके चले जाओ, हमारा माथा दर्द और ज्यादा करें, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा माथा तो ठीक हो गया, ये होता। तो आचार्य कहते हैं कि करना कुछ नहीं है, जो बाहरी आलम्बन लिया जाता है उसका आलम्बन के बिना जीना, ये एक प्रकार से अपने आप से ध्यान है, कोई आलम्बन नहीं। आसान है तो बहुत आसान है, इसमें आनंद की अनुभूति होती है। टेंशन वाले पिंचर वाले बात जितने भी है ना, ये सब इसी वजह से नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सुन लो, ये आपको चिंता सता रही है कि इस प्रकार करने से हमारा जीवन बर्बाद न हो जाए, ये पितुरी आती है कि नहीं बताओ। बिल्कुल ईमानदारी मुझे कह दे रहा, यदि हम बैठे रहेंगे हमारा क्या होगा। आप ये सब मुझे मालूम है, ये मालूम, लेकिन ये पितुरी आने से ही द्रव्य का आलम्बन लिया जाता, क्षेत्र का आलम्बन लिया जाता, काल को याद किया जाता है, और सारे सारे आलम्बन इसी बेस पर उठ जाते, खड़े हो जाते। हमें मत बताओ, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने को मना नहीं, लेकिन उस घबराने की क्या बात हो गई, घबरा क्यों रहे। बिल्कुल करना ही नहीं, अपने करना ही नहीं, करना ही नहीं। आपने डायवर्ट क्यों कर दिया आपने। कोई बात नहीं, कोई इसमें भी कोई बात नहीं, देखो क्यों कहते हैं, देखो आज यंत्र होगा, ऐसे आज यंत्र है, कितने कह दो, देखो ज्यादा नहीं, तेरे को हमें कह रहे हैं आज यंत्र कर, कोई बात नहीं, नहीं ये भी तो कहा जा सकता है कि कल तो अच्छा मिला था। देखो अर्थ ये है कि क्योंकि सहजता लाने के लिए कई उपाय हैं हमारे पास, जो होता है जो होता है उसमें आपको ये चिंता नहीं करना है। कर्म के ऊपर भी थोड़ा छोड़ दो, विषयों का चिंतन क्यों कर रहे हैं, स्मरण स्मरण में आ जाना, निरीवृत्ति, निरीवृत्ति कहा, जम किंच विचिंतन तो निरीवृत्ति हवे जरा साहो लद्दू नेतम रावतम निचम ध्यान। एक ही पर्याप्त हुआ था, ये मनचला पर महाराज ये सब मालूम है कुंचाचार्य योगेश्वरदेव को, हम लोगों के इसलिए कह रहे थे हाँ कर लो, आप सब मालूम है कर लो, लेकिन ये सप्लीमेंट्री है। जीवन पर्यंत तो ऐसे ही करते चले जाते हैं कुछ लोग, और उसी को ही बहुत अच्छा हो रहा है ये समझ लेते हैं, हो ही रहा है, इतने उलझते चले जाएंगे, इतने उलझते चले जाएंगे कि वह भारमय बनता चला जाता, जबकि इतना है ही नहीं। चलो आगे, वे हैं सत इंद्रिया मनो न जाए, निर्मल ध्यान दो विसवो, तो परमात्मा अनाथ पचास इंद्रियां इनकी द्वारा मन तुम न यादि जानने योग्य नहीं है, ऐसा वह परमात्मा तत्व है। निम्बल जान दो ऋतु, निर्मल ध्यान का ही एकमात्र वह विषय है, वह परमात्मा तत्व अनादि अनिधन है। मन तुम न यादि, मन तुम मैंने क्या तुम जानने के योग्य नहीं, इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते, शास्त्रों के द्वारा जान नहीं सकते, वेदों के पुराण के द्वारा जान नहीं सकते, वह परमात्मा तत्व है। इसलिए इन शास्त्रों में, इंद्रियों में, वेदों में ज्ञान नहीं है, निरंजन। वेद शास्त्र इंद्रिय कृत्वा यो अतो मन तुम ज्ञातुम न याति पुनश्च कथम भूत मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाण कषाय योगा विधान पंच प्रत्यय रहित मिथ्या है, अवृत्ति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है, इन चार रूप प्रत्ययों के द्वारा रहित नहीं बंध के कारण बोध से रहित निर्मल स्वशुद्धात्म सम्मिति संजात नित्यानंद एक सुखामृत आस्वाद परिणत अपने शुद्धात्म ज्ञान से उत्पन्न हुआ नित्य आनंद एक सुख अमृत स्वाद उससे परिणत जो ध्यान है वही एकमात्र विषय है, उस ध्यान का विषय है। पुनरपि कथम भूत अनादि परमात्मा भवति, अनादि कोई आदि से रहित है, अंत से रहित है, हे जीव जानी ऐसे जो शुद्धात्म तत्व को जानो तथा जो उत्तम अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्र पांडित्यम शास्त्र पांडित्यम अन्यथा अन्यथा परमं तत्त्वम् लोका क्लिष्यन्ति चान्यथा परमात्म तत्व कैसा है, वेद पांडित्य से भी वह रहित है, अर्थात वेद पाठी बन जाओगे परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं आ गया। शास्त्र पांडित्यम अन्यथा, दूसरी बात है शास्त्र पांडित्य भी वह अन्यथा है, नहीं उससे विपरीत है। कट कट चल रही हूँ अन्यथा परम तत्व, क्यों परम तत्व फिर कैसा है, इससे बिल्कुल अन्यथा है। लोग तो हैं बैठे उठे बोल रहे सुन रहे इत्यादि के अन्यथा एव क्लिशंति ऐसे लोकाहा, ये लोग बेकार ही कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। शास्त्र पढ़ ले ताकि परमात्मा का ज्ञान हो जाए, वेद पुराण सुन ले तो परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उसके द्वारा हो जाए, किसी के द्वारा होने वाला नहीं है। हाँ क्या कहा था, देखो ऐसा है सुनिए कोई बात नहीं, जो व्यक्ति जानना ही चाहता है कि सब की चर्चा हमने कहा फिर वो जान न जा करके ये जानो ऐसा कहा, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं कहा तुम्हें ये पढ़ना ही पड़ेगा। जो प्रमाद से रहित होकर के छह आवश्यकों का पालन करता है उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी बात। अन्यथा ये वे लोग परिश्रम का अनुभव कर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्यों बेचारे लोग कष्ट पाते हैं समझ में नहीं आता, अन्यथा करके देवगुरु महाराज कहते हैं उसके अंदर का बैठ जाओ। पहले में किताब थी मैं वो था ये था कुछ नहीं था, हम तो कह रहे हैं ना भजन खा के आओ, हम भी खा के जाओ, आप हमारे साथ चलो चलो निश्चित हम भी पहले निकलते कोई बाधा नहीं, ताकि तुम लोगों के लिए कोई व्यवधान नहीं होगा जान तुम्हें आए, बिल्कुल घबराओ नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल देने के लिए कहा बस इतना ही कहा दो ये बहुत अच्छा है ये ठीक नहीं है ऐसा मत करो बस इतना ही, देखो ये कर दो तो फिर कहना ही क्या, देवावि तत्व परमस्तु में दयावन नहीं समझते, पालक वक्त चर्या है इसमें कोई है ही नहीं, इधर उधर की बातें जो है हम लोग बहुत खींच करके कर रहे हैं, है ही नहीं सीधे जाओ और एक बार ऊपर करके लिया हो गए। वो करना ये था नहीं, क्या मतलब? महाराज बहुत अच्छे कहते थे क्या ये तो मनचलापन है भैया। ऐसे विश्वनाथ भगवान के जमाने में होते थे और बीच के दो भगवान के जमाने में समय करो बस इसमें पर्याप्त होता। अच्छा ये ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो दिमाग खराब हो गए। उस समय बहुत अच्छी क्वालिटी की हाँ, उस समय अवधि ज्ञान होता था महाराज, अवधि ज्ञान होता था। विमान में बैठ कर नहीं जाते थे, ओम नमः शिवाय महाराज चले गए। कहाँ से आ गए, कहाँ चले गए? ऐसी रिद्धियां, ऐसी सिद्धियां, मन पर ज्ञान तक आपके मन की बात समझते थे। तो आप बाद में करेंगे वो काम बता देते थे फेसिलिटी। हाँ जी, पांच साल नहीं था ये तो, ये आज भी है, ये तो आज भी है। लेकिन कम क्या, कम क्या हुआ? उन्हीं में मॉडर्नाइज हो गया। अरे 5% ये इधर के क्या, उधर के 5%? 5% किसकी तरफ से सोचो विचार कर। सबसे ज्यादा आज रोकना, सबसे ज्यादा आज चिंतित, सबसे ज्यादा आज पागल, सबसे ज्यादा आज प्रमादी, सबसे ज्यादा सब आश्रय लेने के पीछा, कोई आश्रय देने की बात नहीं करता। यही फैसिलिटी बढ़ गई। यही तो हम कह रहे हैं, क्या नहीं करना पड़े। दुख के कारण खाना भी दुख के कारण चाहिए। यही तो बात है, यही तो बात है। खाने खा करके अस्पताल में भर्ती हो जाओ क्या है? ये तो है धारणा बनाई गई कि आज सुख का काल, शुद्ध आज भोजन तक नहीं मिल रहा, शुद्ध हवा तक नहीं मिल रही, विज्ञान का विकास है, ग्लूकोज ग्लूकोज बोलो ग्लूकोज हाँ विश्व पर्यावरण, पर्यावरण के लिए बिगाड़ दो फिर बात की सभा को। अभी देखे थे वो दो तीन मिल वगैरह देख कर क्या उत्पादन केंद्र नदियों में बहा रहा, जैसे दूर की नदी बह रही है। हमने सोचा ये कौन सा रामराज आ गया नागपुर के पास है, दूषित पानी दूध के साथ दूध देख लग रहा था सफेद सफेद। अब उसका क्या होगा? बिल्कुल अनंत है सब। इसीलिए इन चीजों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए ये कहना है, लेकिन नहीं लाते हो तो उसका हिस्सा आपको भी फटेगा। वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह इसी को बोलते हैं। असंख्यात मछली, असंख्यात जीव राशि नष्ट हो रही है, तब आकर के सामने आपके सामने चीज आ रही है, खड़ी है, अच्छी लग रही है। अत्र अर्थभूतं एवं शुद्धात्म उपादेय अन्यत् हेयम् इति, केवल जो है प्रयोजनभूत शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है, बाकी सारे तरह हे है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यो असो वेद वेदादि ऋषि न भवति परमात्मा, समाधि ऋषि भवति पुनरपि तस्य एव स्वरूपं व्यक्तं करोति। वेद का विषय नहीं, इंद्रिय का विषय नहीं परमात्मा, किंतु वह समाधि का ही विषय होता, इसी बात को आगे और कहा जा रहा। केवल दंशन नान मऊ,
केवल दंशन नान मऊ,
केवल दुख सहाओ
केवल दुख सहाओ
केवल वीर सो मुन
केवल वीर सो मुन
सोज परावर भाव
सोज परावर भाव
केवल मात्र दर्शन ज्ञान सुख वीरमय ही स्वभाव वाला है और ऐसा ही तुम जानो पहचानो और मानो। यही एकमात्र परापर भाव मैंने उत्कृष्ट भाव उत्कृष्ट भाव है। केवल असहाय केवल का अर्थ क्या सहाय नहीं नो हेल्प कोई किसी का आलंबन नहीं निरालंबो ज्ञान दर्शन व्याम निर्वृत्त ज्ञान और दर्शन के द्वारा ही रचित है खचित है केवल ज्ञान दर्शन ज्ञान मया केवल आनंद सुख स्वभाव और सुख शांति आनंद का ही वह मात्र स्वभाव वाला केवल अनंत वीर स्वभाव सहायता सहित अनंत शक्ति से संपन्न तम आत्मान मन्यस्व जानो आत्मा इस प्रकार का है ऐसा जानो पुनश्च कथम भूत पुनः कैसे यह परापर जो बहुत उत्कृष्ट है परे जो अरहत परमेश्वर पर है उत्कृष्ट मुक्तिगत है पर मैंने अरहत परमेश्वर और उससे अपर मतलब सिद्ध परमेश्वर अरहत परमेश्वर से भी वो ऊपर उठा हुआ है इसको परापर शुद्धात्मा भाव सर्व प्रकार उपाधि तात्पर्य वही एकमात्र सर्व प्रकार से उपाधि भूत होता है ऐसा माना गया है। सोचो विचार करो कितनी संपदा थी कितना ज्ञान था उन लोगों को उस समय अवधि ज्ञान वगैरह भी होते थे और निमित्त ज्ञान भी होते थे निमित्त ज्ञान के माध्यम से पूरा पूरा सब सारे सारे जानते थे वो कितना ज्ञान का विकास आलम्बन नहीं लेते निरालम ऐसे वेद भी होते थे जो मुख को देख करके ही चिकित्सा करते थे और आज मशीन लगा लगा करके कर रहे हैं क्या माध्यम फिर फेल हो जाते ढाई करो पूछने वालों ने अपने ढंग से बना करके पूछ लेते आप
आधे
तो द्रव्य कर्म रह गए इसलिए ये आधा हो गया चले गए थे भाव कर्म कौन से पूछ लेते अपने अंक गणित बनाया होगा वो ऐसे ही गणित बनाए जाते आजकल ऐसे फिर भी उसी में से कुछ निकाल करके हिसाब किताब लगा के अब क्या करें तात्कालिक बना लिया गया है अच्छा अतः त्रिगुण वंचित इत्यादि लक्षण युक्त यो असो शुद्धात्मा वंचित है लोकाग्रह इस प्रकार का इस प्रकार का जो शुद्धात्मा है वो कहाँ पर रहता है तो लोक के अग्रभाग पर रहता है। जैसे कि कोई मान लो तुम भी है या और कोई पदार्थ तैरने वाला होता है पानी में पहले डुबो दिया गया, फिर बाद में वो पानी के आशीर्वाद पर आ जाता है। जब डूबने की सामग्री उसके पास थी वो निकल गई, ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार शुद्धात्म तत्व जिसका वर्णन किया जा रहा है, कर्मोज जब रहित होता है, जब रहित है निश्चित रूप से वह लोग के आशीर्वाद पर रह जाता है।